ठीक है, मंगलाचरण से शुरू करते हैं। नमो अरहंतारम, नमो सिद्धारम, नमो आयरीयारम, नमो उवर्चायारम, नमो लोय सब्सांपुरम, मंगलम मधुबान वीरो, मंगलम गौतमोगणि, मंगलम कुंद कुंदात्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम, सर्व मंगल मांगल्यम, सर्व कल्याण कारिकम, प्रधानम सर्व धर्मानाम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, दीन भुवन में सार, दीत रात विज्ञान का, शिव स्वरूप शिव कार, नमः त्रियुक्त समान के। छह डाला की तीसरी डाल पर हम डिस्कशन कर रहे हैं। उस पर लास्ट टाइम हमने देव के ऊपर थोड़ी सी चर्चा करी थी और उसमें देखा था चार प्रकार के देव रहते हैं, सच्चे देव, देव कुदेव और अधेव। आप लोग को याद है? हेलो,
हाँ हाँ, हमने आज जी हमने देव की,
या आप लोगों को आवाज आ रही है आप लोगों को क्लियरली?
हाँ हाँ, आती आती है।
ओके,
सबको सुनाई देता है ना जो सभा में है सब?
हाँ जी, सुनाई देता है।
ओके, हाँ, तो देवों के बारे में पढ़ा था कि जगत में ऐसा है कि जो देव है सो देव, जो कुछ फायदा हो, जो हमारी रक्षा करे, हमारी इच्छाओं को पूरी करे, वो देव है। लेकिन जिनागम में ऐसा नहीं है। जिनागम में तो जो अपने स्वरूप की पूर्णता को प्रकट करे, पर्याय में भी अपने ऐश्वर्य को प्रकट करे, वो देव है। ठीक है, इसमें किसी को कोई क्वेश्चन? आई थिंक लास्ट टाइम भी कुछ क्वेश्चन रह गए थे तो हम जो टेकअप नहीं कर पाए थे। कोई भी किसी को पूछना है इसके आगे तो सही।
अनुपम जी, आपकी आवाज थोड़ी सी तेज बोल सकते हो आप?
हाँ,
अभी लो आती है थोड़ी। परंतु किसी
को इससे रिलेटेड किसी को कोई क्वेश्चन है? अभी जो हमने लास्ट टाइम जो देव पर किया था, आई थिंक कोई क्वेश्चन छोड़ दिया था शायद हमने, आई डोंट नो, याद नहीं आ रहा।
लिखा नहीं है मैंने भी।
ओके,
उषाबेन समारोह तो क्वेश्चन,
उषाबेन दोषी नहीं, वो वही था आपने बोला, वो जो चार देव की बात हुई थी ना, तो आप बोलते थे कि आज दूसरे दो की आज बता देंगे आप, सो इसलिए वही मेरा प्रश्न था और कुछ नहीं था।
कौन सा प्रश्न था आपका? सॉरी, क्या प्रश्न था?
जैसे हमने चार देवों की बात की थी ना।
हाँ हाँ
हाँ, तो आई थिंक उसमें सभी पूरा नहीं हुआ था।
ओके ओके,
हमने हमने वैसे इतना, आपने इतना बताया था कि देव, तो देव चार चार कैटेगरी होती है कि एक देव जो वितराग सर्वज्ञ हितोपदेशी जो देव होते हैं, जिसने इंद्रियों को जीता है, दूसरे देव गति के देव, तीसरे कुदेव के जिसमें हम सुदेव की कल्पना करते हैं, वो विंतर आदि देव, और दूसरे अदेव जो वो क्या है, पीपल, गाय, सांप, तुलसी, नदी वगैरह, सूर्य, चंद्र, और फिर आपने हमें मधुपिंगल की थोड़ी सी कहानी कही थी।
हाँ, ठीक है। इसमें जो पंडित दौलत राम जी कह रहे हैं देव जिनेन्द्र, मतलब जो देव होंगे वो इन सब में एक जिनेन्द्र ही है जो देव है। जिनेन्द्र मतलब जिन्होंने इंद्रियों को जीता बराबर। इंद्रिया स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण इनके विषय बनते हैं। स्पर्श स्पर्शन इंद्रिय का, रस रसना इंद्रिय का, घ्राण सॉरी गंध घ्राण इंद्रिय का, वर्ण चक्षु इंद्रिय का और शब्द कर्ण इंद्रिय का। तो पांच इंद्रिया और पांच इंद्रियों के विषय बराबर। अभी एक सिंपल सा क्वेश्चन है, पुद्गल किसे कहते हैं?
जिसका वो पुद्गल जिस वो मिलना और बिछोड़ना
बराबर, जिसमें मिलना बिछोड़ना पूरण दिलन हो। तो पुद्गल द्रव्य के विशेष कौन 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 से हैं?
स्पर्श रस गंध वर्ग आई मीन वर्ण और शब्द भी आ जाएगा, स्कंद में आएगा।
वो तो स्कंद में
स्पर्श स्पर्श रस गंध और वर्ण, जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है उसे पुद्गल कहते हैं बराबर। ठीक है, हेलो।
हाँ जी।
और हमारी जो इंद्रिया है वो भी इसी सिक्वेंस में है, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु, स्पर्श रस गंध वर्ण। पुद्गल द्रव्य के जो हम विशेष गुण पढ़ते हैं वो भी इसी सिक्वेंस में पढ़ते हैं, स्पर्श रस गंध और वर्ण। और इंद्रियों का भी हम सिक्वेंस इसी चक्कर में पढ़ते हैं, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु। ठीक है, शब्द नाम का कोई गुण पुद्गल द्रव्य में नहीं होता, पुद्गल को बोलते हैं अशब्द, उसमें शब्द नाम का गुण नहीं है। पुद्गल द्रव्य में ऐसा कोई गुण नहीं है जो बोलता है कि शब्द करो। ठीक है, तो पुद्गल जो परमाणु है वो कैसा है? वो अशब्द है। ओके, तो ये जो कर्ण इंद्रिय है इसका विषय ये जो शब्द है, ये शब्द कौन सा द्रव्य है? क्योंकि पुद्गल द्रव्य में तो स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है, शब्द तो उसमें शब्द नाम का गुण है ही नहीं। ये शब्द किस चीज का है, किस द्रव्य की पर्याय है?
वो स्कंध की पर्याय है।
ओके, किस स्कंद की? पुद्गल स्कंद की,
पुद्गल
स्कंद की पर्याय है। पर जब परमाणु में ही गुण नहीं है तो परमाणु से मिलकर जो बना स्कंद वो कैसे शब्द कर देता है?
वो प्रवचन सर की है ना, प्रवचन सर की वो गाता है उसमें, मैं वही सोचती हूँ। उधर बताया है कि वो शब्द की ही स्कंद की पर्याय है ऐसे। उस टाइम तो बैठ गया था, उस टाइम मुझे भी प्रश्न हुआ था, फिर बराबर नहीं जमा था, मगर फिर वो ग्रंथ में है ना, ग्रंथ में जरा अच्छी तरह से दिखाया है। मैं वो गाथा कितनी 56 और 57 ऐसा मैं देखती हूँ वो गाथा को।
ओके, और किसी ने कुछ बातें किया हो तो प्रश्न ये है मेरा, मेरा प्रश्न ये है, पुद्गल द्रव्य के पास विशेष गुण 4 हैं, ठीक है, और इंद्रिया 5 हैं, ठीक है। तो ये तो एविडेंट हो गया कि स्पर्शन इंद्रिय का विषय स्पर्श होता है, रसना इंद्रिय का विषय रस होता है, घ्राण इंद्रिय का विषय गंध होता है और चक्षु इंद्रिय का विषय वर्ण होता है। मतलब 4 इंद्रियों के विषय तो पुद्गल हो गए, पक्का है
बराबर।
इंद्रियों के विषय कौन हुए? पुद्गल, क्योंकि जो इंद्रिया है उनके जो विषय हैं उन विषयों वाले गुण किस में पाए जाते हैं, पुद्गल में, स्पर्श इंद्रिय का स्पर्श विषय है वो किस में पाया जा रहा है, पुद्गल में जिसमें स्पर्श पाया जाए। लेकिन एक का बस डाउट है, एक जो कर्ण इंद्रिय है उसका विषय है शब्द। ये शब्द नाम का गुण तो परमाणु में है नहीं, तो शब्द क्या आत्मा में पाया जाता है, आत्मा की पर्याय है, या धर्म आकाश की पर्याय है, आकाश में भी आकाशवाणी होती है कभी कभी, राइट, ये आकाश की पर्याय है, पर्याय किस चीज के, कहाँ से आता है शब्द, ये
शब्द
पक्का हो गया कि शब्द भी पुद्गल द्रव्य की पर्याय है, तो फिर हमारा इतना पक्का हो जाएगा कि जो इंद्रियां हैं उन इंद्रियों के विषय होंगे सारे के सारे पुद्गल, और सारे के सारे पुद्गल यदि इंद्रियों के विषय होंगे तो जो इंद्रियों के विषयों के द्वारा जानते हैं या जिनका जीवन इंद्रियों के विषयों की चीजों पर लगा हुआ है वे अधीन हो गए, क्योंकि इंद्रियों के अधीन मतलब इंद्रियों के विषयों के अधीन, इंद्रियों के विषयों के अधीन मतलब इंद्रियों के विषय पुद्गल होंगे नियम से, मतलब पर द्रव्य के अधीन, तो पर द्रव्य के अधीन हुआ तो वह देव कैसे हुआ, उसकी क्या बोलते हैं कांति कहाँ गई, उसका स्वाभिमान कहाँ गया, स्वाधीनता कहाँ गई, तो वो देव नहीं हो सकता, राइट। इसलिए ये बहुत बड़ी कंडीशन हो जाएगी जिसने इंद्रियों को जीता, राइट। बट पहले इस पक्का हो कि सारे इंद्रियों के विषय पुद्गल है। ये शब्द किसकी पर्याय है, ये तो एकदम क्लियरली लिखा है पंचास्तिका संग्रह में, जब परमाणु का वर्णन किया गया तो परमाणु का विशेष लक्षण क्या बताया गया कि परमाणु क्या होता है, अशब्द होता है, मतलब परमाणु में ऐसा कोई गुण नहीं होता कि वह शब्द को करे, तो परमाणु में शब्द नाम का तो कोई गुण नहीं है, तो शब्द आकाश की पर्याय है,
नहीं पुद्गल की है,
वो पुद्गल के स्कंद की पर्याय है। तो फिर कैसे कैसे होता है शब्द, गुण ही नहीं है तो बिना गुण के कैसे पर्याय हो गई,
शब्द तो पुद्गल ही तो है ना।
हेलो,
भाषा वर्णा के
नहीं, मतलब गुण नहीं है परंतु वो तो ये उसकी विभाविक पर्याय है ना, जैसे हमारे में भी राग द्वेष होते हैं तो वो हमारे में थोड़े गुण है तो भी वो षटकारक से परिणमन होते हैं अपने आप।
हमारे अंदर राग द्वेष विभावी पर्याय इसलिए है क्योंकि हमारे अंदर चारित्र की स्वाभाविक पर्याय है, उस चारित्र की पर्याय नहीं हो रही है तो राग द्वेष की मिथ्या चारित्र की पर्याय हो रही है, तो उनके पास ऐसी कौन सी गुण है जिसकी विभाविक परिणमन है, विभावी परिणमन के लिए गुण तो चाहिए ना कोई जिसका विभाव उल्टा परिणमन हो रहा हो,
बंद है वो विभाव है ना, क्योंकि परमाणु है स्वभाव है, मगर जो वो है वो स्वभाव और विभाव दोनों में डिवाइड होते हैं।
ओके ठीक है, हाँ तो कैसे क्यों, तो परमाणु में शब्द नाम का गुण क्यों नहीं है, सिंपल सी बात है, ठीक है,
सभा में सब है बोलिए।
हाँ, मैं आपसे बोलता हूँ कि आप एक हाथ से ताली बजा के बताइए,
एक हाथ से नहीं बजती,
क्यों नहीं बजती एक हाथ से ताली,
क्योंकि वो टकराते हैं एक दूसरे के साथ
बराबर, तो ये जो शब्द है ये रिजल्टेंट है, ये स्वयं से उत्पन्न ऐसे नहीं हो जाते, तो अकेली परमाणु बोले कि मैं हल्ला करूं अभी मैं शब्द करूं परमाणु के लिए पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए उसको बोला अकेला परमाणु शब्द निकालने में असमर्थ है, इसलिए परमाणु कैसा है, अशब्द है। जब दो स्कंध टकराएंगे, मतलब दो परमाणु भी नहीं, दो स्कंध टकराएंगे तो अपने आप आवाज होगी होगी और होगी बराबर। तो कंडीशन क्या होगी, कंडीशनल है। शब्द कब उत्पन्न होंगे कि जब ही उत्पन्न होंगे जब स्कंध टकराएंगे, स्कंध नहीं टकराते हैं तो शब्द भी उत्पन्न नहीं होंगे। तो स्कंध को टकराना यही शब्द की उत्पत्ति की कंडीशन है, करेक्ट। तो महास्कंधों के टकराने से शब्दों की उत्पत्ति होती है। तो हाउ डज इट वर्क, ये काम कैसे करता है कि जैसे पूरे लोक में कारमार वर्गणाएं बिछी हुई है, ऐसी एक विशिष्ट जाति की वर्गणाएं और होती है जिनको बोलते हैं शब्द वर्गणा। ये भी हर जगह व्याप्त है, हर जगह। तो जब भी दो स्कंध जिस जगह पर टकराते हैं उस जगह की शब्द वर्गणाएं शब्द रूप से परिणमित होती है, तो शब्द करती है, ठीक है, ऑटोमेटिक। तो उस समय शब्द होता है। तो शब्द वर्गणाओं को होने के लिए क्या कंडीशन है, उनकी परिणमन के लिए क्या कंडीशन है, कि उनके पर शब्द वर्गणा है, वहां पर कोई ना कोई स्कंध टकराए। और जो शब्द वर्गणाए हैं, ये जैसा आपने बोला स्कंध, ऐसी स्कंध है, कुद्गल की वर्गणाए हैं, और ये एक्चुअली रिजल्टेंट गुण है, मतलब एक गुण नहीं है कोई, दोनों के पास स्पर्श है, स्पर्श है तो छुए जा सकते हैं, छुए जा सकते हैं तो उनके पास थोड़ा सब्सटेंस है, मतलब छू रहे हैं ना हम इसको, छू रहे मतलब छूने जैसी चीज है, तो वजन है, राइट। तो दो छूने वाली चीजें टकराएंगी तो आवाज आएगी ही, ये लॉजिक है उसका, राइट।
तो अपन हम लोग अगर ऐसे ऐसे सोचे कि ये पुद्गल में तो चार है, अगर पुद्गल में शब्द गुण भी दिया होता होता होगा तो भी ये व्यवस्था क्यों नहीं हो सकती।
नहीं, पुद्गल परमाणु में शब्द गुण दे देते तो केवली ज्ञान केवल ज्ञान के ज्ञान में फिर वो बोलते ना विरोधी हो जाता, हम बोलेंगे शब्द का नाम का गुण है इसमें, तो अब अकेला परमाणु घूम रहा है उसमें शब्द गुण की कौन सी पर्याय हो रही है बताइए।
ये तो स्पर्श गुण
नहीं,
स्पर्श गुण का काम, स्पर्श गुण का काम शब्द करना नहीं है, वो तो स्पर्श क्योंकि छुआ जा सकता है तो उसकी टक्कर भी होगी, टक्कर भी यदि होती है उसकी, वो टकराते हैं आपस में, तो शब्द अपने आप निकलते ही है, आवाज आती ही है। वो आवाज क्यों आती है, क्योंकि पूरी जगह, ये पंचास्ती का संग्रह की गाथा है, उसमें लिखा कि पूरे जगत में हर जगह ये शब्द वर्गणाएं व्याप्त है, और जहां पर भी स्कंधों का टकराना होता है वहां पर ये शब्द रूप परिणमित हो जाते हैं, ठीक है। इसके लिए हम लोगों बन जाते हैं, थिएटर्स होते हैं उनके बाहर आवाज नहीं आती क्योंकि वो क्लोज्ड रूम रहते हैं, राइट। तो शब्द वर्गणाओं का एक्सपेरिमेंट बहुत इजीली किया जा सकता है कि मैं बहुत तेज बोलूं और वो वाला शब्द रिफ्लेक्ट होकर दीवार से टकरा के मेरे पास आए, इको होता है, तो इको में भी क्या होता है, टकराना होता है शब्दों का। तो इधर पर मैं बहुत तेज बोल रहा हूँ लेकिन आगे ग्लास वॉल है, तो ग्लास वॉल में टकरा कर शब्द आगे नहीं जा पाएंगे, राइट, आगे नहीं जा पाएंगे, तो ग्लास वॉल के उस साइड आवाज आएगी ही नहीं, मैं कितना भी तेज बोलता रहूं, राइट। ये क्या प्रूफ करता है कि इट हैज टू बी समथिंग जिसके बीच में टकराना हो पाए, यदि वो टकराना, और जितना ज्यादा टकराया जाएगा, जितना उसके रिपल को बढ़ाएंगे उतनी दूर तक आवाज जाएगी, राइट। तो जितना तेज हम चिल्लाते हैं उतनी तेज आवाज उसकी दूर तक जाती है। तो हाउ डज इट वर्क कि मैंने यहाँ से चिल्लाया तो यहाँ से रिपल वो बना, तो जहां जहां तक की शब्द वर्गणाएं टकरा पा रही है उधर उधर तक शब्द जाएगा, उसके अलावा पांचवें शब्द उसके बाद नहीं जाएगा।
तो आप बोलते हैं कि ये शब्द वर्गणा इट इज डिफरेंट देन भाषा वर्गणा।
भाषा तो सेम चीज है, सेम चीज। हम अपने में बोलते हैं कि हम भाषा बोल रहे हैं, हिंदी बोल रहे हैं, इंग्लिश बोल रहे हैं, सुनियोजित बोलते हैं, तो ये भाषा वर्गणा में कह देते। बाकी शब्द वर्गणा ही मतलब क्या होता है, दो टाइप के शब्द होते हैं। एक तो जो डिफाइंड होते हैं, जैसे कि हम आप और हम बात कर रहे हैं प्रोसेस, राइट, और एक होते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता, ठीक है, जैसे कि बादल का गड़गड़ाना, बिजली का कड़कना, इनकी भी आवाज होती है, बारिश का गिरना, बारिश या बिजली धूप की भी आवाज होती है, तो शब्द होते हैं कि नहीं होता उसमें। हेलो,
हाँ वो बराबर आवाज है, मगर वो
आवाज है,
अक्षर अनाक्षरी है, अनाक्षरी
और अनक्षरात्मक बराबर,
अक्षरी और अनाक्षरी।
तो हम लोग जब भाषा वर्गणा के प्रयोग में लेते तो हम बोलते तो हम भाषा बोलते हैं, बाकी एक ही आवाज तो आ रही है ना, उसकी भी आ रही है, हमारी भी आ रही है, ठीक है। तो ये भाषा वर्गणा भी शब्द वर्गणाओं का तो खेल है।
और आप ऐसे बोलते हैं कि पुद्गल में ये शब्द गुण नहीं है क्योंकि केवली ने नहीं बताया है इसलिए।
नो 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 नो, क्योंकि उसमें हैगा कैसे, होगा कैसे, उसकी पर्याय क्या बोलेंगे हम, चार गुणों की निरंतर पर्याय हो रही है, शब्द नाम का गुण आ जाएगा तो परमाणु अकेला घूम रहा है, तो उसमें शब्द करीब ऐसी कोई शक्ति ही नहीं है। तो पंचास्ती काय में इसका मूल लक्षण बताया कि परमाणु कैसा है, अशब्द है, क्योंकि अकेला पद्गल द्रव्य शब्द कर ही नहीं सकता, उसको कंडीशन ये है कि दो स्कंद टकराएंगे तो ही शब्द होगा, नहीं टकराएंगे तो नहीं होगा।
तो माने जब भी शब्द का फॉर्मेशन होता है तो उस टाइम ये शब्द भाषा वर्गणा की वो परमाणु की दो पर्याय जोड़ेगी तभी ही होगा,
ठीक है, बराबर। दो परमाणु नहीं, दो स्कंद, परमाणुओं से कुछ नहीं होगा, परमाणु बहुत छोटे होते हैं और दो परमाणु टकराते भी नहीं, परमाणु टकरा पाए उसमें ऐसा कुछ है ही नहीं, स्कंद
तो दो स्कंद, तो वो जो स्कंद,
हाँ,
शब्द वर्णक भाषा वर्गणा के स्कंद होते हैं तो वो उसमें भी जो होता है ना, दो दो और चार का जोड़ना होता है, एक और तीन का वैसे, हाँ, तो वो वाला होगा, ऐसे वाले दो स्कंद हो गए तभी ही शब्द का फॉर्मेशन होगा,
वो टकराएंगे, शब्द का फॉर्मेशन होगा, वो टकराएंगे तो शब्द बनेंगे। मैं आपको गाथा बताता हूँ,
वो नंबर बताना पंचास्ती का। और ये प्रवचन सार गाथा में, प्रवचन सार ग्रंथ में भी है, और मैंने देखा इधर तो ये 56वीं गाथा है, मगर वहाँ दूसरी गाथा है जहाँ बताया है कि क्यों शब्द पर्याय है, वो मुझे नहीं मिलती है, मगर 56 में ऐसे बोला है कि शब्द इस पुद्गल, उन्होंने वहां बोला है कि स्पर्श रस गंध वर्ण और शब्द के जो पुद्गल छे ते वो इंद्रियों ना विषयों छे, जैसे आपने बोला पांच इंद्रियों के, मगर वहां शब्द को पुद्गल ही बोला है।
बराबर, देखिए गाथा नंबर 77 है पंचाशी काय जी की, 77 स्कंदों, 77 पंचाशी काय जी की गाथा।
अच्छा,
हाँ, सर्व स्कंदों का जो अंतिम भाग उसे परमाणु जानो, वह परमाणु अविभागी, एक, शाश्वत, मूर्ति प्रभव और अशब्द है,
शब्द रहित है, बराबर है।
उसकी टीका में लिखा हुआ है, और रूपादि के परिणाम से उत्पन्न होने पर भी अशब्द है, ऐसा निश्चित है, क्योंकि शब्द परमाणु का गुण नहीं है,
बराबर,
ठीक है, ये टीका में लिखा, फिर 78 गाथा में वापस लिखा, जो आदेश मात्र से मूर्त है और जो चार धातुओं का कारण है वह परमाणु जानना, जो कि परिणाम गुण वाला है और स्वयं अशब्द है, वापस लिखा, दो गाथाओं में हो गया। 77 में भी अशब्द बोला, 78 में भी अशब्द बोला, राइट? और इसके आखिरी में टीका में भी ऐसे लिखा है, परमाणु को, जिस प्रकार परमाणु को परिणाम के कारण अव्यक्त गंधादी गुण है ऐसा ज्ञात होता है, उसी प्रकार शब्द भी अव्यक्त है ऐसा नहीं जाना जा सकता। क्यों? क्योंकि एक प्रदेशी परमाणु को, परमाणु कितना है? एक प्रदेशी है। एक प्रदेशी परमाणु को अनेक प्रदेशात्मक शब्द के साथ एकत्व होने में विरोध है, क्योंकि शब्द एक प्रदेश के कारण हो जाए ऐसा नहीं है। शब्द को होने के लिए शब्द स्वयं एक तो स्कंद है और वो स्कंदों के टकराने से होता है, तो एक प्रदेशी परमाणु शब्द रूप हो नहीं सकता और शब्दों से वो टकरा सकता नहीं है, परमाणु टकराते ही नहीं है, इसलिए वो अशब्द ऐसा होने में विरोध है।
और 79 में अनुभव जी दिया है।
अब 79 पर अब एक्सप्लेन करेंगे, तो फिर शब्द क्या है? जब शब्द परमाणु का गुण नहीं है तो क्वेश्चन उठा कि शब्द क्या चीज है? उन्होंने बोला शब्द
अनंत परमाणु के समूह से बना होता है,
स्कंद पदगल परमाणु दल का संघात है और वे स्कंद स्पर्शित होने से टकराने से शब्द उत्पन्न होता है, इस प्रकार वह नियत रूप से उत्पाद्य है। उत्पाद्य कैसा? कि दो चीजें टकराएगी तो उत्पन्न होगा, इसलिए वो उत्पाद्य है, ऐसे उत्पन्न नहीं होगा, बिना नहीं टकराएंगे तो वो उत्पन्न नहीं होगा, तो उसके उत्पन्न होने में कंडीशन है, कंडीशनल है, इसलिए वो कैसा? उत्पाद्य है। इस लोक में देखिए, इस लोक में बाह्य श्रवणेन्द्रिय द्वारा अवलंबित भावेन्द्रिय द्वारा जानने योग्य ऐसी जो ध्वनि वह शब्द है, वह शब्द वास्तव में स्वरूप से अनंत परमाणुओं के एक स्कंद रूप पर्याय है, बहिरंग साधन भूत महास्कंदों द्वारा तथाविद परिणाम रूप उत्पन्न होने से वह स्कंद जन्य है, क्योंकि महास्कंद परस्पर टकराने से शब्द होता है, उत्पन्न होता है। पुनः ये बात विशेष समझाई जाती है। अब ये पूरा मैथमेटिक्स उसका समझा रहे कैसे इट वर्क्स। देखिए, एक दूसरे में प्रविष्ट होकर सर्वत्र व्याप्त होकर स्थित ऐसी जो स्वभाव निष्पन्न ही, अपने स्वभाव से ही निर्मित अनंत परमाणुमयी शब्द योग्य वर्गणाओं से समस्त लोक भरपूर होने पर भी, तो पहली बात तो क्या कि पूरे लोक में शब्द वर्गणाएं भरी हुई है। कैसी है वो शब्द वर्गणाएं? कैसी है वो? कि वो एक दूसरे में प्रविष्ट होकर पूरे लोक में व्याप्त है, मतलब ऐसा नहीं कि इधर उधर आजू बाजू में, हर जगह, जैसे कि मेरा शरीर है, शरीर के अंदर भी एक दूसरे में प्रविष्ट होकर हर जगह व्याप्त है शब्द वर्गणाएं, हर जगह है, क्योंकि शब्द कहाँ कहाँ हो सकते हैं कि हर जगह हो सकता है। आपका हार्ट बीट करता है तो उसकी भी आवाज आती है, उसका भी शब्द होता कि नहीं होता है? अंदर हम बहुत ज्यादा डीपली यदि हम कोई मशीन लगाएं, शायद माइक्रोमाइक्स लगाएं कुछ अंदर जाकर, तो अंदर ब्लड फ्लो होगा तो उसका भी शब्द होगा, जैसे नदी के बहने की आवाज होती है, तो अंदर बॉडी के अंदर भी इतनी सारी चीजें हो रही है, उनके भी बहने की आवाज होगी कि नहीं होगी? हर जगह शब्द तो हो रहा है कहीं ना कहीं, तो ये शब्द वर्गणाएं जो है, बड़े बड़े पुद्गल स्कंद, ये कैसे है? हर जगह अंदर तक व्याप्त है, एक दूसरे में प्रविष्ट होकर, ठीक है? तो ऐसा होने पर भी, हर जगह ऐसी शब्द योग्य वर्गणाओं के फैले जाने पर भी, हर जगह तो आवाज नहीं होती, अभी आवाज कहाँ पर हो रही है? हमारे आजू बाजू, यहाँ शब्द करने वाली वर्गणाएं जरूर है बट आवाज नहीं हो रही, करेक्ट?
बराबर
हाँ
ठीक है। तो जब शब्द वगैरह हर जगह है तो हर जगह शब्द क्यों उत्पन्न नहीं होते? देखो क्या लिखा है यहाँ पर, एक दूसरे में प्रविष्ट होकर सर्वत्र व्याप्त होकर स्थित ऐसी जो स्वभाव निष्पन्न है, अनंत परमाणु में ही शब्दों की वर्गणाओं से समस्त लोक भरपूर होने पर भी, इतना होने पर भी, जहाँ जहाँ बहिरंग कारण सामग्री उदित होती है वहाँ वहाँ वे वर्गणाएं शब्द रूप से स्वयं परिणमित होती है। क्या कि हर जगह वर्गणाएं तो है लेकिन हर जगह वो आवाज करती हो ऐसा नहीं है, उनको बहिरंग कारण चाहिए। वो बहिरंग कारण क्या है? स्कंदों का टकराना, जहाँ जहाँ एक्सीडेंट्स होंगे वही वही वो बहिरंग जो कारण हुए उनके कारण ये वर्गणाएं शब्द रूप परिणमित होंगी। यदि बहिरंग कारण नहीं है तो ये शब्द को नहीं करेंगी। दैट्स द कंडीशन, ठीक है। इस प्रकार शब्द नियत रूप से अवश्य उत्पाद्य है। उत्पाद्य मतलब उत्पन्न कराने योग्य, मतलब जिसकी उत्पत्ति में अन्य कोई निमित्त तो होता है ऐसा शब्द कैसा है? उत्पाद्य है कि बिना कोई यदि टकराएगा नहीं तो उत्पन्न नहीं होगा, शब्द नहीं होगा उत्पन्न। इसलिए वह स्कंद जन्य है, वह परमाणु का गुण नहीं है, वो स्कंदों के टकराने से होता है तो हम उसको स्कंद जन्य कह देते हैं। बट मैंने ताली बजाई तो ताली बजाई तो आवाज आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। समझने वाली बात यह है इसमें कि जो आवाज आएगी वो ताली से नहीं आएगी। ताली बजाई तो आवाज आई, बट वो आवाज ताली के टकराने से नहीं आ रही है, मेरे हथेलियों के टकराने से। वो आवाज आ रही है शब्द वर्गणाओं से जो वहां पर स्थित है। बट वो शब्द वर्गणाएं आवाज कब करेंगी? वो तब करेंगी जब दो महास्कंदों के टकराने का कारण उनको मिलेगा।
तो वहाँ ताली निमित्त होगी, वहाँ हाथ की वो निमित्त होगा।
निमित्त है वो उसकी आवाज नहीं है, क्योंकि उसका रिपल कहाँ तक जाएगा? उसका रिपल कहाँ तक जाएगा कि जहाँ तक की शब्द वर्गणाओं में वाइब्रेशन को दे पाएगी, ठीक है। स्कंद टकराए, अब कितनी तेज ताली बजाइए उतनी दूर तक आवाज होगी, करेक्ट। देखो हम लोग को भी यहाँ पर लाइट से प्रवचन करना, हमारा बहुत बड़ा हॉल है। अब हम क्या करेंगे पीछे वालों तक आवाज आए? क्या करेंगे हम सबसे पीछे तक आवाज आए? बहुत बड़ा हॉल है, व्हाट विल डू?
लाउड स्पीकर,
हम लाउड स्पीकर लगाएंगे। लाउड स्पीकर के हमने एक सबसे आगे लगा दिया तो बस काम हो गया, पीछे तक आवाज आएगी कि नहीं? हम पीछे साइड भी थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पर हम स्पीकर लगाते हैं, राइट? करेक्ट, ऐसे ही करते हैं ना हम। एक रूम है तो उसमें चार स्पीकर हो गए इधर उधर, राइट? व्हाई हम ऐसे स्पीकर क्यों लगाते हैं?
आवाज चारों ओर आए तो किसका?
लेकिन ये स्पीकर के लगाने, एक स्पीकर से आवाज आ रही है ना, वो पीछे तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है? ये जो आवाज होती है ट्रेवल करती है, ठीक है। मैं जितना भी तेज बोलूं, जितना भी तेज बोलूं, मेरे टकराने से जो वाइब्रेशन इन शब्द वर्गणाओं के पास गया है तो वो शब्द वर्गणाओं के पास किस क्षेत्र तक गया है? उस क्षेत्र तक की शब्द वर्गणाएं शब्द करेंगी,
करेक्ट,
राइट? मैंने यहाँ से टकरा कर यहाँ पर से वाइब्रेशन एक जनरेट किया, अब वो वाइब्रेशन आगे की क्षेत्र की कितनी शब्द वर्गणाओं को इम्पैक्ट करेगा? जिधर तक करेगा वहां तक आवाज जाएगी,
बराबर।
मैं क्लोज चैम्बर रूम में बैठा हूँ, यहाँ पर मेरी आवाज गई, वो ग्लास वॉल से टकराई और वो आगे की, उसके आगे की शब्द वर्गणाओं को कुछ इम्पैक्ट नहीं दे पाई तो शब्द वही टूट गया, उसके आगे नहीं गया, राइट? मैं एक बहुत बड़े पहाड़ के ऊपर चढ़ा और मैंने वहां बहुत तेज चिल्लाया तो शब्द आगे तक गया, बट आगे जाके उसने रिफ्लेक्ट कर दिया तो मुझे इको, अपनी आवाज ही थोड़ी देर में आपको सुनाई दे रही है, राइट? उसको इको बोलते हैं। तो क्यों ऐसा हो रहा है? कि हर जगह शब्द वर्गना है, वो शब्द वर्गना कब इम्पैक्ट करती है, जबकि हम पुद्गल स्कंधों के वाइब्रेशन को इस दुनिया में देखते हैं, तब वो वहां पर उसमें इम्पैक्ट आता है। कितना आता है कि उतनी देर तक आपके पास शब्द आएगा जितनी देर तक इम्पैक्ट रहेगा। सीधी बात, राइट। तो शब्द किससे आता है, शब्द आता है शब्द वर्गना से, राइट। तो जैसे आकाश में जब वो अग्निनाथ भगवान ने दीक्षा ली और बाकी के जो 40,000 राजा थे वो एकदम भ्रष्ट हो गए, और फिर 40,000 थे 4,000 थे नहीं पता, मैं भूल रहा हूँ थोड़ा, तो वो इतने सारे जो मुनिराज बने थे उनको समझ ही नहीं आया क्या करना है, तो वो लोग कुछ भी इधर करने लगे मुनिराज बनकर, राइट। वो कंदमूल खाने लगे, वृक्षों से फल तोड़कर खाने लगे। तो फिर इंद्र ने क्या किया, इंद्र ने आकाश से वाणी करी, आकाशवाणी करी। ये आवाज कहाँ से आई, किसने बोला, किसके मुंह से आई, कि आवाज करना ये किसी के मुंह का काम नहीं है, ये तो शब्द वर्गणाएं है। आप पुद्गल को टकराओ तो शब्द कहीं से भी निकलेगा, समोक्षरण का अतिशय होता है। भगवान ऊपर बैठते हैं जन्मकुटी में, सबसे ऊपर अंतरिक्ष में विराजमान होते हैं, राइट, और उनका मुंह भी नहीं चलता, उनके सर्वांग से वाणी दिव्य ध्वनि निकलती है, राइट। तो उनकी सर्वांग से वचन ही होता है, दिव्य ओमकार ध्वनि निकलती है, राइट। तो समोक्षरण का चमत्कार ये होता है कि जितने लोग 12 सभाओं में बैठे हैं उन सबको बराबर आवाज आती है, बराबर। तो वहाँ स्पीकर्स लगे हुए होते होंगे, क्या होता होगा कि स्पीकर से हमारी व्यवस्था है कि हम वाइब्रेशन का इम्पैक्ट कितना लॉन्ग कर सकते हैं, राइट। तो हम उतनी ज्यादा बढ़ा देते हैं, बट एक्चुअल काम तो यहाँ पर किसका है, एक्चुअल काम है कि वाइब्रेशन होना चाहिए, शब्द वर्गणाओं तक इम्पैक्ट पहुंचना चाहिए। वह अतिशय के वहां पर अपने आप रिवाल इम्पैक्ट पहुंच रहे तो अपने आप वहाँ आवाज उतनी आती है, राइट। तो इतना पक्का हुआ कि जो शब्द है रिजल्टेंट है, बट ये आत्मा के टकराने से उत्पन्न नहीं होंगे, उत्पन्न होंगे तो पुद्गल स्कंधों के टकराने से होंगे, करेक्ट। इसलिए इनको बोलते हैं स्कंध जन्य, स्कंध से उत्पन्न हुए, ठीक है।
या वो समूह शरण में ये दिव्य ध्वनि के वहाँ के जो स्कंध है वो आपको आप टकराते ही रहते हैं।
हाँ, मतलब वो उनको उनके उत्पन्न होने का निमित्त मिलता रहता है, राइट। वो जब उत्पन्न होंगे तो वहां पर देयर हैज टू बी समथिंग जो इनको इंड्यूस करे, राइट।
मुझे वहाँ निमित्त, मुझे वैसे समझ, मुझे तो ये बहुत इतना समझ नहीं आता है आज का प्रकरण, परंतु जो निमित्त है तो वो भगवान है, वो तो एकदम स्थिर है, वहाँ कुछ हलन चलन भी नहीं है, तो
अतिशय है ना उनका,
नहीं अतिशय एटले सुपर,
विशेष शक्ति,
बट ई वॉट इज दैट,
सर्वांग से ओम निकलता है, ठीक है। अब आप लोग ट्राई करिएगा, आप लोग देखकर ओम बोलिएगा, ठीक है। हम यदि ओम ऐसे ही नॉर्मली बोलते हैं, ओम से बॉडी में बहुत सारे वाइब्रेशन आते हैं, आपने देखा होगा। और इसके लिए ओम को सबसे बड़ा मंत्र बोलते हैं, क्योंकि इन लोगों ने जो अभी जैसे श्री श्री है, राइट, श्री श्री रविशंकर आर्ट ऑफ लिविंग, वो लोग ओम को क्यों बुलवाते हैं, उनको कहते हैं कि ओम बोलने से बॉडी में वाइब्रेशन बहुत सारे आते हैं, तो उसमें बहुत सारी प्रोसेस शुरू हो जाती है ब्लड प्यूरिफिकेशन की और ये और वो ऐसे ओम के बेनिफिट बताते हैं, राइट। अब वो तो अपना काम है नहीं कि बॉडी में क्या इम्पैक्ट हो रहा है, उससे मुझे क्या लेना देना, राइट। बट ओम शब्द अकेली बहुत वाइब्रेशन करता है, ये तो हम करके भी देखते हैं, तो ओम से बोलने से पूरी बॉडी में वाइब्रेशन होता है नीचे तक, आप करके देखिएगा, राइट। सिमिलरली जो वहां पर सर्वांग से ध्वनि चल रही है, उनके वचन योग जो की उसके द्वारा चल रही है, तो कुछ तो वहां पर भी होता होगा, वो अतिशय भगवान का कैसे होता है अपन को रियली नहीं पता, बट होता होगा, क्योंकि विदाउट यदि आवाज आ रही है तो इट हैज टू, वो शब्द स्कंधों के टकराए बिना नहीं आएगी, तो अब वो भगवान के बुद्धि पूर्वक नहीं हो, अबुद्धि पूर्वक होता है वो ठीक है, भगवान तो अपने अनंत सृष्टि में विराजमान है, अपने काल में होता है उनकी जब ध्वनि का समय होता है तो अपने आप होने लगता है, ये सारी बातें ठीक है, बट जब भी होगा तब कहीं ना कहीं से स्कंधों का टकराना होगा, होगा और होगा, तभी चलेगा।
तो अनुभव जी मुझे एक वन मोर क्वेश्चन वैसे है कि जो जब आवाज होती है जैसे वो यू नो थंडर लाइटनिंग वो उसकी आवाज होती है, और जब जब हम बोलते हैं शब्दों की फॉर्मेशन जो होती है कि व्हाटएवर तो वो उसमें और सब में फर्क क्या है कि ये वर्गणा चक्राती है कि उसका आगे का एक्सप्लेनेशन थोड़ा दीजिए
दिया है ना आगे दिया है कि शब्द के दो प्रकार हैं,
शब्द दो प्रकार हैं प्रायोगिक और वैशेषिक,
राइट
करेक्ट,
और पुरुषादि के प्रयोग
पूरी डिटेलिंग है उसमें,
वह प्रायोगिक है और बेगादि यानी नेचुरल से होता है उसे वैशेषिक कहते हैं,
करेक्ट। तो शब्द जो हम बोल रहे थे भाषात्मक अभाषात्मक प्रायोगिक वैशेषिक, जैसे कि हम जो भी इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं जैसे कि ड्रम बजाते हैं ढोलक बजाते हैं तबला होता है या हारमोनियम होता है, ये सब भी शब्द को उत्पन्न कैसे करते हैं, वो टकरा कर ही उत्पन्न कराते हैं, राइट। हारमोनियम हुआ, पियानो हुआ, गिटार हुआ, तो स्ट्रिंग्स को आपको स्टिमुलेट करना पड़ेगा, वीणा हुई स्ट्रिंग्स होती है, बांसुरी हुई आपको फूंक मारकर शब्द उत्पन्न करने होते हैं, तो कहां भी कहीं भी ढोल मंजीरा कुछ भी होगा जहाँ भी शब्दों की उत्पत्ति है आपको कुछ ना कुछ टकराना ही पड़ेगा, दैट्स द रूल। इसमें नीचे दिया हुआ है किसी भी प्रकार का शब्द हो किंतु सर्व शब्दों का उपादान कारण लोक में सर्वत्र व्याप्त शब्द योग्य वर्गणाएं ही है, वे वर्गणाएं ही स्वयं शब्द रूप से परिणमित होती है, जीव ढोल मेघ आदि मात्र निमित्त भूत है, कि हमारा ताली बजाना ये निमित्त भूत है, राइट। शब्द उत्पन्न हो जाए वो शब्द का उपादान कारण शब्द वर्गणाओं से है, ठीक है।
तो ऐसे बोल सकेंगे ना यहाँ तो ये शब्द इस स्वयं भू अपने आप से ही ऐसे उत्पन्न,
लेकिन वो शब्द स्कंद जन्य है, पर्याय है वो, जो पर्याय है वो पर्याय भी स्वयंभू है, वो पर्याय भी स्वयं होगी अपने शतकारक से होगी, ठीक है, लेकिन उसके लिए वो उत्पाद्य है, मतलब यदि टकराएंगे नहीं स्कंद तो वो उत्पन्न नहीं होगी, बट स्कंद टकराए तो भी वो स्कंदों की आवाज नहीं है, हाथों की हथेलियों की आवाज नहीं है, जो आवाज आ रही है वो आवाज शब्द वर्गणाओं की है, और जितनी दूर तक शब्द वर्गणाएं ट्रेवल करेंगी उतनी दूर तक उस शब्द को ले जाया जा सकेगा, ये हम
तो
सिस्टम लगा देते हैं।
तो वहाँ अपने भावेंद्रिय में क्या लेंगे, जो भावेंद्रिय में जैसे कर्णेंद्रिय की भावेंद्रिय में हम लोग ध्वनि लेंगे,
बराबर, तो वो हम क्या लेंगे, ध्वनि को जानने वाला ज्ञान, वो भावेंद्रिय हो गया,
ज्ञान का प्रदेश है।
तो फिर ध्वनि और ध्वनि और शब्द में क्या फर्क है,
दोनों सिनोनिम्स हैं, ध्वनि शब्द आवाज ये सब सिनोनिम्स हैं, एक ही बात है, कोई अलग अलग नहीं, ठीक है। आवाज आई, आवाज को जाना वो भावेंद्रिय, आवाज का होना, आवाज का कानों तक पहुंचना ये द्रव्य इंद्रिय तक का ये काम हो गया, तो उसने रिसीव की, कान से आवाज यानी शब्द वर्गणाएं टकराई ये रविंद्री का काम, वो टकराई तो भाविंद्री ने जाना कि भाई कौन से शब्द चल रहे हैं, ये भाविंद्री का काम, और उन शब्द वर्गणाओं का होना क्या हुआ कि वहां स्कंद टकराए थे तो उनसे शब्द वर्गणाएं हुई, शब्द वर्गणाएं कान तक पहुंची, कान तक पहुंची तो कान ने ज्ञान को बताया, इतना लंबा वो चक्कर चलेगा,
तो फिर आपका जो पहला प्रश्न था कि पुद्गल में जो चार चीज है और अशब्द बोला, फिर आपने पूछा कि शब्द तो क्या होगा,
तो
बराबर
शब्द तो फिर पुद्गल तो है ही,
करेक्ट,
मगर परमाणु में नहीं है
स्कंद जन्य। हाँ लेकिन उसको हम परमाणु, मतलब मैंने कंफ्यूज करने के लिए पूछा था आप लोगों से कि अच्छा। क्या चीज है, क्योंकि जगत में ऐसा मत है कि आकाश को बोल देते हैं शब्द कौन करता है, आकाश करता है। जगत में ऐसा मान लेते हैं लोग कि शब्द, क्योंकि दिख नहीं रहा है परमाणु में शब्द नाम का कोई गुण नहीं है, तो कहीं कहीं मान लिया जाता है कि शब्द कौन करता है, आकाश कर लेता है। लेकिन शब्द आकाश कैसे करेगा, आकाश की वो पर्याय पॉसिबल नहीं है, राइट?
आकाश तो अवगा ही देगा ना, दूसरा कुछ नहीं करेगा।
करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो
और इसमें दूसरा भी दिया है ना, क्या 79 गाथा में क्या निम्नोक्तानुसार भी शब्द के दो प्रकार हैं, भाषात्मक और अभाषात्मक। तो जो भाषात्मक है संस्कृत भाषा, और जो भानुबेन पूछती है ना कि केवली भगवान की दिव्य ध्वनि क्या है, तो वो उसमें लिखा है
अभाषात्मक है।
हाँ वो अनक्षरात्मक है, दिव्य ध्वनि रूप व अनक्षरात्मक है, भाषात्मक सभी द्विधि है, उसको प्रायोगिक वैशेषिक दो, तो दो
प्रायोगिक जो हम
वो प्रायोगिक है, मेघादि है उसका वैशेषिक क्या है।
हाँ जैसे जंगल में पेड़ गिरा उसकी आवाज आई, हवा चल रही है तो पत्तियों की आवाज आ रही है, तो इसका कोई डेफिनेट साउंड नहीं है, इसका कोई सरगम नहीं बन सकती, तो इसको बोलते हैं वैश्विक। और मैंने कीबोर्ड पर कुछ बजाया है, गिटार में कोई स्ट्रिंग से कोई नोट चलाया, तो वो प्रायोगिक है, क्योंकि मैं जैसा प्रयोग करूंगा वैसी वैसी आवाज आएगी। सा पर जाऊंगा तो सा ही आएगा, रे पर जाऊंगा रे आएगा, राइट? तो ये प्रायोगिक जो पुरुष के प्रयोग के द्वारा होते हैं वो प्रायोगिक, ठीक है? तो इतना पक्का हो गया कि जो इवन शब्द है वो भी पुद्गल द्रव्य की ही विशिष्ट पर्याय है, बराबर। तो हमारे पास पांच इंद्रियां थी, और पांच इंद्रियों के प्रतिपक्ष में हमारे पास पांच इंद्रियों के विषय थे, जो कि इत्तेफाक ही इसको कहें कि सारे के सारे किस में पाए जाते थे, पुद्गल में। स्पर्श पुद्गल में, रस पुद्गल में, गंध पुद्गल में, वर्ण पुद्गल में, और शब्द भी पुद्गल की ही विशिष्ट पर्याय हो गई। तो जो पांच इंद्रियों के विषय, वो सारे के सारे, जो पांच इंद्रियां जिनको जानती हैं, जो पांच इंद्रियां जिसके कारण पांच इंद्रियों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, राइट? यदि विषय ही नहीं होंगे तो इंद्रियों का कोई काम ही नहीं रहेगा। हम देखेंगे किसको जब वर्ण ही नहीं होगा, तो हम सूंघेंगे क्या जब गंध ही नहीं होगा, तो पांच इंद्रियों को काम देने वाले कौन थे, पांच इंद्रियों के विषय थे। और ये पांचों के पांचों एक टर्न्ड आउट कि ये सब तो क्या है, पुद्गल है, जड़ है, राइट? तो जो जिसका सुख पांच इंद्रियों के विषयों के अधीन है उसका सुख तो बड़ा भयानक हो गया, वो तो ट्रेजेडी में आ गया बहुत बड़ी, राइट? क्योंकि ये पुद्गल, पुद्गल का परमाणवन पराधीन, पराधीन मतलब इट्स नॉट इन योर हैंड्स, जब आपके हाथ में नहीं है, यदि आपका सुख ही इंद्रियों के द्वारा लिया जाता है कि चलो भाई हमारे पास तो इतनी शक्ति है, हम महेश है, हमारे पास तो इतना वैभव है, हम विष्णु है, हमारे पास तो पूरा ब्रह्मांड है, हमने बनाया है, हम ब्रह्मा है, ये सारी, फिर हमारे पास हमारी पत्नी है, हमारे हथियार है, हमारे सेवक है, हमारा इतना सुंदर शरीर है, नाकशैया है, ये है वो है, जब हमारा पूरा का पूरा ऐश्वर्य जिस पर हमारी प्रभुता आधारित है वो एक्चुअली उधार लिया हुआ है, वो एक्चुअली किसी और से लिया हुआ है, मतलब जो कभी आकर वो ले जाए तो हम कुछ कह नहीं पाएंगे, तो फिर दिक्कत होगी ना। ऐसा हुआ, एक कहानी आती है हल्के मत में, दो बहुत ही बलवान भाई थे, उनका नाम भी बड़ा अच्छा सा था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, ठीक है, दो नाम, दो बहुत बड़े वीर राक्षस थे, मतलब बड़े बड़े एकदम, उन दोनों में क्या था, एक सी शक्ति थी, एक सी पावर थी, दोनों भाई थे, जुड़वा भाई थे, तो उन्होंने बोला चलो चलो हम शिव जी को प्रसन्न करते हैं, हम तपस्या करेंगे। तो उन्होंने दोनों ने एकदम दोनों क्या है दोनों का एक सा एकदम एक सी बॉडी है एक सी ताकत है. नाम बहुत फली थे उनके, मुझे नाम याद नहीं आ रहे. उन्होंने तपस्या करना शुरू किया, बहुत लंबा तप किया तप किया तप किया. तो शिव जी प्रसन्न हो गए, भाई ठीक है चलो. तो वो प्रकट हुए और उन दोनों को उन्होंने बोला कि चलो आपको क्या चाहिए. तो पहले वाले ने बोला कि भगवान हमको तो कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, हमें तो आप पार्वती जी दे दो, और कुछ नहीं चाहिए मुझे. दूसरा वाला बोलता है हाँ मुझे भी पार्वती जी चाहिए. शिव जी घबरा गए, अब पार्वती जी कैसे दूं, और एक बार बोल दिया तो देना पड़ेगा राइट. तो बहुत असमंजस की स्थिति पड़ गई कि अब देना तो पड़ेगा. तो लकीली शिव जी का दिमाग चल गया. शिव जी ने बोला ठीक है मैं पार्वती जी को देने को तैयार हूँ, मैं तुम लोगों से प्रसन्न और मना कैसे करूंगा, लेकिन अब ये भी मांग रहे हैं ये भी मांग रहे हो, तो तुम दोनों पहले आपस में डिसाइड कर लो किसको चाहिए राइट. और एक को दे पाऊंगा मैं पार्वती जी, एक ही है मेरे पास. तो दोनों एकदम समान बल के थे, तो दोनों लड़ने लगे, तो दोनों लड़ने लगे, तो नेगेटिव पॉजिटिव समान के, तो दोनों मर गए. खुश होकर वो कितने होशियार है, कितने होशियार है और कितना बुद्धिमान, उन्होंने दिमाग लगाया. लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि भाई मतलब जा सकती है ना पार्वती जी किसी भी दिन राइट. इट्स नॉट लाइक समथिंग यू ओन. फिर आपकी ये स्टोरी से रेलेवेंट है ना ये. सो ये जो इंद्रियों के विषय है इनसे ये तो मतलब एक टाइम जैसे कि शादियां होती है तो हम कोई होटल बुक करते हैं, हम इतना सारा इधर से सामान लेके आते हैं, पूरा केटरिंग का अलग से आता है, ये अलग से आता है राइट. तो ये चीजें मैं लेके आया. अब मैं ये तो नहीं बोल सकता ना कि मेरा इतना वैभव है. आई हैड मनी टू गिव रेंट, मेरे पास इतना पुण्य था कि ये मैंने बुलाया, 3 दिन शादी के 3 दिन तक मेरे पास रहता, तो वो पुण्य का रेंट ही है ना. उसके बाद तो वो चला जाएगा, वो केटरिंग वाला चौथे दिन नहीं सुनेगा ना मेरी बात. सिमिलरली यदि इंद्रियों के विषयों से मेरा सुख है तो ये तो एकदम रेंट पर आया हुआ है, मेरा तो है नहीं. इससे मेरी प्रभुता, हाउ इज इट पॉसिबल कि वो मेरी प्रभुता सस्टेन करेगी. तो सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रभुता का लक्षण दिखाया गया कि ऐसा करो, इस लोक में सुख इन इन वस्तुओं से देखा जाता है, तो मैं सुखी तो उसी को मानूंगा जिसका सुख इन वस्तुओं के अधीन ही नहीं है. वाली वस्तुएं तो किराए पर आती है. इट्स नॉट कि आपने इनको ओन कर लिया है. एज लॉन्ग एज यू आर गिविंग रेंट, एज लॉन्ग एज यू हैव योर पुण्य टू स्पेंड, आपके पास पुण्य है खर्च करने के लिए राइट. हम पुण्य खर्च ही तो करते हैं. देखिए विषय मिलते हैं पुण्य की उदय से हैं, बट भोगी पुण्य को खर्च करके जाते हैं राइट. तो द मोमेंट आपके पास एक बहुत बड़ा सोने का हार है ठीक है, एकदम मस्त है, और वो आपने बैंक के लॉकर में रख दिया राइट. तो अब वो हार तो आपके पास लेट से 2 साल तक रहने वाला है, तो आप चाहे उसको पहनो तो भी उसका पुण्य खर्च हो रहा है, नौकर में रखो तो भी पुण्य तो जा रहा है उसका
बराबर.
तो वो तो तभी तक रुकेगा जब तक आपके पास उस पुण्य को देने के पैसे हैं. वो पुण्य देते जा रहे हो आप, तो आपके साथ स्थिति में है. द मोमेंट पुण्य गोज अवे इट हैज टू गो, वो चला जाएगा. ऐसा ही उनके साथ है हमेशा से राइट. इनकी सारी कहानियों में यही है, घबरा जाते हैं. बताओ शिव जी के साथ तो ऐसा मोस्टली होता ही है, वो कुछ भी दे आते हैं फिर दिक्कत हो जाती है, वो मरता नहीं है, फिर सारे देव आते हैं त्राही माम आपने कैसा वरदान दे दिया, फिर बोलते नहीं नहीं वो मेरा है वो कैसे करूं, फिर वो अलग युक्ति लगाते नहीं इसको ऐसा कर दो मैंने ये बोला है ये करेंगे तो नहीं. जैसे रावण को बोल दिया बेटा तुम नहीं मरोगे कभी, तो अब रावण नहीं मर रहा तो समझ ही नहीं आ रहा है क्या हो रहा है. तो विभीषण राम को बताते नहीं इसके यदि आप हार्ट पे अटैक करोगे तो ये मर जाएगा, गर्दन उड़ाते रहोगे तो नहीं इसके तो गर्दन आती जाएगी. तो ऐसे वरदान देती क्यों है फिर राइट. तो फिर बाद में बोलते नहीं बड़े कितने स्मार्ट है इन्होंने एक लूप होल निकाली. अरे जब ये भी तो देखो कितने बेवकूफ है फिर कि वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं ऐसा. तो ये सारे काल्पनिक शास्त्र है, इनमें कोई दम है नहीं. कोई भी थोड़ा सा भी नॉलेज वाला होगा तो वो समझ जाते कि नहीं ये तो माइथोलॉजी है, नाम ही उसका माइथोलॉजी है, मिथ राइट. मिथ से ही बना है तो नाम ही वो लोग उसको माइथोलॉजी ही नाम देते हैं, तो वो कोई बात नहीं. बट क्वेश्चन इज कि यदि आपका सुख इंद्रियों के अधीन है, मतलब इंद्रियों के विषयों से आता है और इंद्रियों से भोगती है, देन हाउ ट्रांजिएंट, वो कितना क्षणिक सुख होगा, ये हमें सोचना चाहिए। तो हमारे लिए तो वो ही ऐश्वर्यवान है, वो ही धन संपत्ति वाला है, वो ही प्रभुता वाला है, जिसका सुख इंद्रियों से नहीं आता। इसके लिए यहाँ पर किसको लिया? जिनेन्द्र को लिया। जिन इंद्रिय जिनता, और देखो देव में सिद्ध को भी नहीं लिया है यहाँ पर। अभी हम अभी सिद्ध को नहीं लेंगे, सिद्ध हमारे ध्येय है, सिद्ध ध्यान की वस्तु है बराबर, लेकिन जिनकी पूजन होती है, जिनकी आराधना होती है, वो तो सामने दिखेंगे ना मुझे, मैं जिनको देखकर उनकी गुणानुवाद कर पाऊं। तो वो जिनेन्द्र देव जो समव शयन में विराजमान है, गंधकुटी में विराजमान है, उनके ऐश्वर्य को देखेंगे। भगवान आपके पास देखो पांच इंद्रियां हैं, आपके पास सब कुछ है, लेकिन इतना होने पर भी आपका सुख किसी से भी नहीं। आपके पास जैसी चक्रवर्ती और इंद्र के पास विभूति नहीं है, ऐसी अनुपम विभूति उत्पन्न हुई है। जिस कुबेर ने समव शयन बनाया वो भी आश्चर्य में है कि बन कैसे गया, मुझे तो पता ही नहीं था। हेलो,
हाँ जी,
हेलो,
हाँ जी, हाँ।
तो ये वाली विभूति तो आपके पास ऐसी है जो लोग के पास है ही नहीं। क्या क्या कीमत है स्वर्ग की, भोगों की और चक्रवर्ती के राज्य की आपके समव शयन के वैभव के सामने। और आपके पास ऐसा भी नहीं है कि आंखों में चश्मा लगा हो, कानों में मशीन लगी हो, आपकी पांच इंद्रियां भी एकदम स्वस्थ हैं बराबर। तो भी आपके सुख का एक अंश ना तो इन इंद्रियों के उत्कृष्ट विषय और ना ही इन स्वस्थ इंद्रियों के आश्रय से आता है। इसलिए आप मेरे लिए सचमुच देव हैं। देव मतलब ऐश्वर्य के धनी, जिनका स्वयं की श्री होती है, लक्ष्मी होती है, ऐश्वर्य होता है, प्रभुता होती है। तो आप सच्चे देव हैं, आप मेरे लिए आइडल है, आदर्श है, राइट? तो इसलिए जिनेन्द्र देव होंगे तो जिनेन्द्र, मतलब यही एक लक्षण है कि इंद्रियों को जीतना होना चाहिए उसने, ठीक है। अब देखो इंद्रियों को जीतेगा तो ऑटोमेटिकली उसको सर्वज्ञ होना पड़ेगा, क्योंकि यदि उसका ध्यान इंद्रियों से नहीं आएगा तो कहीं से तो आएगा, कहाँ से आएगा? आत्मा से आएगा, तो आत्मा से आएगा तो पूरा आएगा, तो सर्वज्ञ। इंद्रिय जिनता में सारे आ जाते हैं, वितरागता, सर्वज्ञता, हितोपदेशिता, सब कुछ उसमें आ जाएगा बराबर। तो लक्षण तो क्या है? लक्षण तो एक यही है कि वो इंद्रियों को जीतने वाला होना चाहिए, राइट? तो देव का क्या है? इंद्रियों को। जगत के बाकी सारे देव क्यों नहीं है? कि उनका सारा सुख, सारा ऐश्वर्य उधार पर है, ट्रांजिएंट है, अभी चले जाएंगे तो फिर कुछ मिलेगा नहीं, निगोद में भी जा सकते हैं क्या? तहते जय था वर्तन धरे, यो परिवर्तन पूरे करें। तो उनका तो ऐश्वर्य क्या है? चार दिन की चांदनी है और फिर कुछ पता नहीं क्या होना है,
फिर अंधेरी रात
बराबर। इसके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि देव का लक्षण एकदम डिफाइंड हो, वेल डिफाइंड। और वो क्या है? इंद्रियों का जीतना। इंद्रियों का जीतना मतलब सीधी इंद्रियां मतलब कौन सा? परद्रव्य। क्योंकि क्यों इंद्रियां परद्रव्य क्यों है? कि इंद्रियों के विषय सामने परद्रव्य प्रकट है बराबर, और परद्रव्यों के विषयों को जो करे, जो उसका विषय बनाए, वो इंद्रियों में प्रवर्तता ज्ञान, वो भी परद्रव्य है, वो भी जड़ है, वो भी पुद्गल होगा। ये सब परद्रव्य है, पराधीनता है, ये अनित्य है, इनमें कुछ सुख नाम की चीज नहीं, नीरस है, इनमें सुख नाम का गुण ही नहीं है, तो हम इसमें सुख की खोज करें ये पागलपन है, ठीक है?
हाँ बराबर।
इतना कुछ होने पर भी यदि वो इंद्रियों से जानते हैं और सुख भोगते हैं, इतना होने पर भी मान लिया कि उनके पास बहुत ऐश्वर्य है, उनकी इंद्रियां काम कर रही है, ठीक है, मान लिया चलो छेड़े के, लेकिन 15 साल के लिए तो देव है ना वो, ठीक है 15 साल तो उनका ऐश्वर्य है। तो इतना होने पर भी यदि उनके पांच इंद्रियों के विषयों से सुख आ जाता तो भी हम एक बार मान लेते, लेकिन इसमें तो आकुलता आती है, तृष्णा आती है, तो वो सब भी इच्छा से ही जल रहे हैं, तृष्णा से ही जल रहे हैं। तो इनमें जब सुख नाम का कोई निशान ही नहीं है तो फिर हमारे देव कैसे? सुखाभास, वो तो एक झूठ बोला हमने अपने आप से, क्या अच्छा है सब सब मजामा बद्दू मजामा सब कुछ कुछ नहीं है बस लेकिन है बहुत आकुलता है। हम जैसे हम मेरे घर में मम्मी कुछ बनाती है बहुत ही टेस्टी बनाती, सबसे पहले पूछता हूँ कितना बनाया और है कि नहीं है, मतलब वो नहीं है कि जो है वो खा लिया जाए, ये कितना रहेगा, तृष्णा आएगी ना पहले हमारी, ये और हो जाता राइट, इतना ही है क्या और क्यों है यार, एक और ले आना था इतना अच्छा था। तो कोई भी अच्छी चीज होती है तुम्हारी सबसे पहले तृष्णा जगती है, उसमें सुख नहीं आता, हम कल्पना करते कि ये अच्छा है यार ये कितना ये रहेगा नहीं रहेगा, तो उसके भोगने का काम नहीं है, उससे पहले उसके खत्म हो जाने का दुख शुरू हो गया, मम्मी ज्यादा बनाई है ना आपने, मैं इतनी खा लूं और बचेगी बाद में, नहीं फिर आप उसको मत देना मैं ही खाऊंगा राइट, तो वो खाने का सुख नहीं है उसके खत्म हो जाने का दुख है। तो हर जगह ऐसी ऐसी हमारी वासनाएं पड़ी, हम उसको सुख नाम दे देते हैं बट वो नितांत नितांत दुख ही है। ठीक है, तो इसके सबसे इम्पोर्टेंट है देव का लक्षण, आप तो बस ये देखो उसने इंद्रियों को वश में किया कि नहीं किया, यदि इंद्रियों को जीता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, इंद्रियों को जीतना मतलब पुद्गल से अपना सर्वस्व छोड़कर अलग हो जाना, जीव को जीव रूप देखना और आत्मा में रह जाना, नहीं पुद्गल में कुछ काम ही नहीं, परदेश है वो, कुछ काम ही नहीं वहां पर, ठीक है।
यहाँ जो अव्यक्त वाली बात चली थी ना जो परमाणु में, हाँ तो वो जैसे गंध अव्यक्त है, रस रस और जैसे वर्ण वर्ण को भी अव्यक्त बोलेंगे क्योंकि परमाणु के हिसाब से अव्यक्त है, मगर वर्ण तो अपन देख सकते हैं मगर फिर भी वो बंद होगा तभी देख सकेंगे, बराबर।
मैं बताता हूँ, हाँ हाँ देखिए, पृथ्वी होती है, पृथ्वी यानी मिट्टी, हमने मिट्टी यानी पृथ्वी, ठीक है, मिट्टी को छू सकते हैं देख सकते हैं, उसकी खुशबू भी होती है और उसका स्वाद भी होता है, तो मिट्टी में स्पर्श रस गंध वर्ण चारों के चारों व्यक्त है, ठीक है,
बराबर
ओके। हम पानी के पास गए, पानी को देख सकते हैं छू सकते हैं और उसको पी सकते हैं, लेकिन पानी की खुशबू नहीं होती, पानी में गंध नहीं होती, बराबर, तो पानी में गंध अव्यक्त है, बाकी तीन
तो सही मगर अव्यक्त है,
बड़ा है लेकिन अव्यक्त है, ठीक है। हम फिर अग्नि के पास गए, तो देखो अग्नि को छू भी सकते हैं देख भी सकते हैं लेकिन उसका स्वाद नहीं ले सकते, उसको खा नहीं सकते और उसकी खुशबू नहीं होती, तो उसमें स्पर्श और वर्ण तो व्यक्त है लेकिन गंध और रस अव्यक्त है लेकिन प्रकट नहीं है, करेक्ट। और हम वायु के पास गए, तो देखो हम वायु को छू बस सकते कि ठंडी हवा चल रही है गर्म हवा चल रही, वो दिखती भी नहीं, उसको खा भी नहीं सकते, उसको सूंघ भी नहीं सकते, तो वायु में क्या हुआ, अकेली स्पर्श व्यक्त है, बाकी के तीन अव्यक्त है, बराबर। तो ये चार धातु कहलाती है, पृथ्वी जल अग्नि वायु, ये चार धातु है, इन चार धातुओं का कारण कहलाता है पुद्गल, ठीक है। तो इन चार में से पृथ्वी को चारों की चारों स्पर्श और गंध वर्ण व्यक्त है, जल को गंध व्यक्त नहीं है, अग्नि को गंध और रस व्यक्त नहीं है, और वायु को अकेली स्पर्श व्यक्त है, बाकी की तीन चीजें नहीं है प्रकट, आपको नहीं मिलेगी देखने को सूंघने को खाने को, हवा नहीं मिलेगी, करेक्ट। तो सिमिलरली कि ऐसा कहा जाता है कि वायु में भले स्वाद नहीं है कलर नहीं है, लेकिन आप हाइड्रोजन को भी वायु मानते हो तो हाइड्रोजन का कोई कलर नहीं है राइट, लेकिन हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन मिलाओगे तो अचानक से पानी दिखने लगेगा ना हमको, हवा दिखेगा ना, H2O बन जाएगा तो दिखेगा नहीं दिखेगा, तो यार ये कलर कहाँ से आ गया, हाइड्रोजन में तो नहीं था, कि था लेकिन व्यक्त नहीं था, करेक्ट। तो ये बोला जाता है कि एक गुण भी यदि प्रकट है तो चारों के चारों गुण होंगे, पक्का है, ठीक है, दैट्स द रूल। लेकिन शब्द के साथ ऐसा नहीं है, आप शब्द का ही नहीं बोल सकते कि देखो शब्द नाम का गुण है लेकिन उसकी पर्याय अभी अव्यक्त है, क्योंकि परमाणु के अंदर शब्द की क्या पर्याय होगी, ये वाली बात लॉजिकली ही नहीं बैठती है, जब नहीं टकरा रहे तब तक क्या पर्याय होगी कि बिना टकराए तो वो आवाज करते ही नहीं है। तो शब्द को ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वो अव्यक्त है। शब्द नाम का गुण तो है, जैसे रस नाम का गुण है लेकिन व्यक्त नहीं है, ऐसे शब्द गुण अव्यक्त है। नहीं नहीं, शब्द नाम का गुण ही नहीं है परमाणु में, व्यक्त वक्तता की बात ही नहीं है, क्योंकि अकेला द्रव्य वो एक प्रदेशी द्रव्य है, और जो शब्द लगते हैं उसमें बहु प्रदेशी होना पड़ता है, बहुत सारी चीजें टकराएंगी तब आवाज होगी। तो एक प्रदेशी द्रव्य बहु प्रदेशी होने वाले शब्द को कैसे करेगा, उसमें केपेबिलिटी ही नहीं है, तो हम उसको उसका गुण कैसे बोलते हैं, व्यक्त रूप से अव्यक्त रूप से कैसे भी नहीं पॉसिबल है।
तो जब जो दो पर्याय होती है भाषा वगणा की, तो जो जब भी हम पर्याय शब्द बोलेंगे तो उसके लिए गुण मांगता है।
करेक्ट।
तो फिर
नहीं, बराबर। मैंने आपसे बोला ना, ये स्पर्श गुण का एक कंडीशन ही है, जो चीज छुई जा सकती है वो टकरा भी सकती है। आप धीरे से छुओगे तो उसको छूना बोलते हैं, आप दौड़कर आकर उससे टकरा जाओगे, राइट। छूने और टकराने में क्या अंतर है, छूना इज लाइक स्लोली टकराना कॉन्शियसली, और टकराने में क्या है कि आप जा रहे थे, आपको पता नहीं सामने चीज रखी और आप उससे टकरा गए। लेकिन दोनों काम तो स्पर्श के हुए ना, एक स्लो टच हुआ एक फास्ट टच हुआ, तो स्लो टच हुआ तो हर्ट नहीं हुआ, फास्ट टच हुआ तो हर्ट हुआ। यस और नो?
बराबर।
तो टकराना वो स्पर्श गुण का काम है एक्चुअली, करेक्ट, यही बोला उसमें, स्पर्शते हैं यानी टकराते हैं, दो मायस्कन जब स्पर्शते हैं टकराते हैं उसको बोलते हैं टक्कर होना, राइट। तो टकराना तो स्पर्श गुण की पर्याय है, लेकिन जो टकराएंगे तो सहज ही ऐसा है कि आवाज आती ही है, वो आवाज को आप यू कैन नॉट जस्ट नेग्लेक्ट इट, वो आवाज आएगी, वो एक उसका लेट्स से कि एक एडिशनल बेनिफिट है, मुफ्त टकराएंगे तो आवाज अपने आप आएगी।
तो मैंने
ऐसे बोल, आवाज जो आ रही है,
हाँ, तो ये ऐसे बोल सकते है ना, मैंने उस जब भी टकराना होता है तो ये सहज ही परिणति है कि आवाज आती है।
करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो ये स्पर्श की विशिष्ट व्यवस्था में टकराना हुआ, और टकराएंगे और जब उनके कठोर, यदि वो कठोर है बहुत, तो टकरा के आवाज भी करेंगे, तो आवाज करेंगे तो अब वो आवाज कहाँ से आई, कि जैसे कर्म योग्य वर्गणाएं हर जगह है लेकिन आप राग द्वेष करते हो तो वो कर्म रूप परिणमित होती है, ऐसी शब्द योग्य वर्गणाएं हर जगह है लेकिन स्कंद टकराते हैं तभी वे शब्द रूप परिणमित होती है, ये उसका रूल है।
ठीक है। मैं थोड़ी ऐसे थोड़ी पहरा परेशान हो गई थी कि क्योंकि मैं प्रवचन सार गांव में अभी भी देखती हूँ, वहाँ एक वो आपको नंबर मालूम है?
नहीं, मैं प्रवचन सार की एग्जैक्ट डाटा नहीं पता, बहुत पहले पहले देख लेता हूँ, दो सेकंड, 55-56।
हाँ, वो 56 में है शब्द का बोला, मगर एक गाथा थी कि उसमें डिस्क्रिप्शन दिया कि क्यों उसको शब्द पर्याय बोला है, मगर वो दिखती नहीं है।
गुरु पर चर्चा शुरू करेंगे।
हाँ जी,
गुरु का भी परिग्रह बिन लक्षण क्यों है, वितरकता भी लक्षण हो सकता था। ठीक है, अभी देव का जिनेंद्र बताया है, वो अपने आज डिस्कस किया है, आपको कोई क्वेश्चन हो नेक्स्ट क्लास उसको टेक अप करते हैं। ठीक है,
हाँ जी, ठीक है,
ओके ओके, चलिए मैंने शुरू करते हैं। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए किन वाणी माँ को वंदना सतपार, उसके लिए किन वाणी माँ को वंदना सतपार।